만탄.
예, 아카시와니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए हरित परिवहन की ओर बढ़ता भारत और इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग में ई मोबिलिटी के कार्यक्रम निदेशक सुदेंद्र ज्योति सिन्हा और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
मंथन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की। नीति आयोग ने एक ताज़ा रिपोर्ट पेश की है, $200 बिलियन का अवसर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन। ये रिपोर्ट एक नया रोड मैप पेश करती है जो सब्सिडी की जगह सख्त नियमों और राष्ट्रीय ईवी नीति की मांग करती है। तो क्या भारत 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य हासिल कर पाएगा और ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, इस पर बातचीत करेंगे नीति आयोग के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम डायरेक्टर सुधेंदु ज्योति सिन्हा जी से। सिन्हा सर, स्वागत है आपका।
धन्यवाद
सर। आपसे समझना चाहेंगे कि भारत में 2024 में केवल 7.6 गाड़ियां जो है परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, जबकि ग्लोबली इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। अगर भारत में हम इतनी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? लोगों का रुझान क्या बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी नई चीजें होंगी जिससे लोगों का रुझान बढ़ना चाहिए?
तो ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, बल्कि इसको हम कहें जो नई गतिशीलता है, ये पूरे विश्व का ही रुझान है। किस प्रकार से जो है वह गैसोलीन बेस्ड गाड़ियां, यानी पेट्रोल डीजल इस तरह की गाड़ियों से धीरे धीरे हम जो है क्लीन गाड़ियों की ओर आए, ये बड़ा ही मतलब पूरे विश्व के लिए यह कहें कि एक टॉप एजेंडा है मोबिलिटी का। और खासकर बड़े शहरों के लिए, जैसे दिल्ली ऐसी शहर है, बॉम्बे है, दुनिया के और भी जो शहर है उनके लिए इसका और भी महत्व है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट निश्चित तौर पर जो है जो गैसोलीन बेस्ड व्हीकल्स होते हैं ये आपको पोल्यूशन के एक जरिया बन जाते हैं।
बिल्कुल।
तो क्या किया जाए जिससे पूरा मोबिलिटी हमारा क्लीन हो? आपको इस परिपेक्ष में ये बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में 7 वर्ष पहले एक समिट हुआ था, ग्लोबल मूव समिट बोले थे, विज्ञान भवन में वो समिट हुआ था, और वहां पर उन्होंने जो है ले डाउन किया था, उन्होंने बताया था कि जो भविष्य में जो गाड़ियां चलेंगी, जो फ्यूचर मोबिलिटी होगा, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या उसमें गुणवत्ता होगी, क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे। वहां पर उन्होंने कहा था कि उसको कटिंग एज का होना चाहिए, उसको क्लीन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, उसको कॉमन होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। और कुल मिलाकर देखते हैं कि उन्होंने जो 7 चीजों की बात की, 7 जो गुणों की बात की, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पूरी तरह से आता है। तो हम लोगों ने जो है उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग इसमें, बल्कि उनके उस वक्तव्य के करीब 6 महीने के बाद नेशनल मिशन का गठन हुआ, उसके अगले महीने ही FAME II 2019 में अप्रैल महीने से शुरू हुआ, और अब PM E-Drive जो एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है। और इस प्रकार से कहेंगे पूरे देश का रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको उदाहरण देते हैं, इस वक्त दिल्ली में करीब 2500 बसेस चलती हैं, आपके सामने के जो रोड हैं इस पर करीब 12 रूट की बसेस चलती हैं, 2 साल पहले 1.5 साल पहले एक भी बस नहीं था। तो इस प्रकार से संख्या बढ़ती चली जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो शायद उसमें और भी ज्यादा बढ़त की गुंजाइश।
ये जो जितनी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं उसके पीछे जो FAME I और FAME II स्कीम रही है जिसमें सरकार सब्सिडी देती थी, वो भी एक बड़ी वजह रही है। अब नीति आयोग सब्सिडी की जगह नियमों को सख्त करने पर और ICE जो वाहन है उन पर प्रतिबंधों की सलाह देता है, तो ये ईवी के विकास में किस तरह से सहायक होगा?
देखिये, इस तरह से देखें कि जैसे कई सारे अप्रोचेज हो सकते हैं। एक हमने चर्चा किया कि इंसेंटिव की बात आपने बताई, बिल्कुल सही, इंसेंटिव वास्तव में डिमांड जनरेट करता है। उसी तरह से हम सप्लाई साइड इंसेंटिव की बात कर सकते हैं, क्या किया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ईवी की ओर धीरे धीरे बढ़े करके। तो आप दिल्ली में ही दें, यदि दिल्ली में कई तरह के इस तरह के प्रतिबंध हैं, जैसे कि आप पोल्यूटेड गाड़ियां रोड पर लेकर के नहीं जा सकते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य, उसके पीछे यही मंशा है कि आप जो है रोड पर जो आपकी गाड़ियां चल रही वो क्लीन व्हीकल्स। उसी प्रकार से जो है अभी हाल में ऑफकोर्स इसे अभी होल्ड पर रखा गया है कि 15 साल से जो ज्यादा उम्र की गाड़ियां थी उनके बारे में प्रावधान आ रहा था। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे, और कल इसे हमारे मेंबर साहब ने बताया भी कि ये जो मैंडेट है या ये जो डिसइंसेंटिव है ये बड़ा ही सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा ना कुछ हम कर दें कि जिससे कि बहुत ज्यादा जो है मतलब क्योस हो जाए, क्योटिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के ट्रांजिशन जो है कितनी सुविधाजनक तरीके से लाया जाए, इसीलिए हमारा बल किस पर है? अवेयरनेस पर है, लोगों को बताया जाए। हमारा बल किस पर है? बल इस पर है कि किस प्रकार से इसके दाम को, इसके प्राइस को हम रिड्यूस कर सकें। उन चीजों की भी बात उसके साथ।
सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऊंची लागत भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हम नॉर्मल आईसी इंजन गाड़ियों की बात करें तो उनसे काफी ज्यादा प्राइस हो जाता है हर सेगमेंट में, तो ये एक कितनी बड़ी चुनौती है इस चीज को पूरे देश में लागू करने को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने में?
नहीं, देखिए, प्राइस यदि ज्यादा रहेगा तो नेचुरली जो कंज्यूमर होगा वो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने पैसे क्यों लगाए जाए। खासकर भारत ऐसे देश में जहां गाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 7% जीडीपी देता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का करीब 47% 49% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है।
बिल्कुल।
तो गाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और कितने लोग लगे हुए हैं, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जनरेट करता है। किस प्रकार से गाड़ियों के कम हो सके, इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे कम दाम पर आ सके? क्या है कि अभी हम छोटे स्केल में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा एडवांटेज ऑफ स्केल मिलेगा। दूसरा, बहुत सारी चीजें अभी हमको बाहर से आयात करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारा लोकलाइजेशन बढ़ेगा, हम अपने देश में बनी हुई चीजें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आदि चीजें यूज करने लगेंगे, उसका दाम घटने लगेगा। देखिए, एक बड़ा एम क्या है, हमारी जो बड़ी मंशा केवल यही नहीं है कि गाड़ियां केवल जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाए, ये नहीं है, ये तो है, लेकिन उससे बड़ी मंशा है कि दुनिया का ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल भारत में होना चाहिए। विश्व में जब गाड़ियों की आवश्यकता हो, और आपको हम बताएं कि हमारी गाड़ियों के प्रति विश्व का रुझान कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे आप ओईएम से बात करेंगे जो बस के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप देखें कितने देशों का उनके पास कॉल आता है कि आप हमको अपने बसेस का सप्लाई दीजिए। तो हमारी गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस में पैरिटी तभी आ सकेगा जब धीरे धीरे लोकलाइजेशन अचीव होगा। बैटरी की टेक्नोलॉजी में हम बढ़त हासिल करेंगे, वह भी एक आवश्यक है, और उसके साथ साथ कुछ बिजनेस मॉडल्स, अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल्स लाए जाएं। जैसे क्या होता है, एक गाड़ी के दाम में करीब 35-55% तक तो उसका बैटरी है।
बिल्कुल।
अब आप गाड़ी लेने गए, फर्ज कीजिए कि आपने यदि 10 लाख रुपए की गाड़ी ली तो 5 लाख का तो वही हो गया। यदि कोई आदमी आपको उसी को सब्सक्रिप्शन मॉडल में दे दे, यानी कह कैसा करते हैं, आप 5 लाख घटा करके दाम दीजिए, अब उसका दाम 5 लाख आ गया, और वो कहता है कि जब जब आप चार्ज करेंगे बैटरी हमारी तब हम थोड़ा सा पैसा रिकवर कर लेंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, आपको हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जितने बार आपका वित्तीय संपर्क होगा, लेन देन होगा, हर ट्रांजेक्शन में आपको फायदा नजर आएगा। जब आप खरीदेंगे, जब आप उसका शुरू में कागज बनाएंगे जिस पर सरकार ने छूट दे रखा है, रोड टैक्सेस को माफ कर रखा है, जब आप उसकी पार्किंग करने जाएंगे, पार्किंग एरिया जो है उसके लिए रिजर्व किए गए हैं, जब आप उसकी चार्जिंग कराने जाएंगे, पेट्रोल से डीजल से आपको सस्ता पड़ेगा, जब आप उस पर जो है उसको रीसेल करने के लिए जाएंगे, तो हर जगह जब आपको सस्ता लगने लगेगा, कम दाम लगेगा, तब आप इसी और आपका रुझान वास्तव में होगा।
सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने पर गुजरात में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवी के भविष्य और इस दिशा में देश में हो रही प्रगति पर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है, यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है।
आप लोगों ने एक हैवी व्हीकल सेगमेंट को लेकर के भी बात की है रिपोर्ट में, और कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट अलग अलग शहरों में चलाना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
तो हैवी व्हीकल सेगमेंट में हम दो तरह की गाड़ियों को लेते हैं, एक तो बसेस को लेते हैं, एक ट्रक्स को लेते हैं। बसेस की स्थिति आप लगभग मतलब जो हम चाह रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़त हो रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको कहें कि हमारे पास दो इस समय नेशनल स्कीम्स हैं, एक पीएमई ड्राइव है जिसमें हमने तय किया था करीब 14,028 बसों को हम सपोर्ट करेंगे, और एक पीएम ई बस सेवा है प्रधानमंत्री ई बस सेवा है। दोनों में फर्क ये है कि ई ड्राइव वाला जो है वो केवल 9 बड़े शहर जहां आबादी 40 लाख से ज्यादा है वहां के लिए है, और ये जो ई बस सेवा है वो बाकी शहरों के लिए है, तो उसमें करीब 169 के आसपास शहर उसमें आते हैं। दोनों में आप देखिएगा, पहले वाले स्कीम में 14,000, दूसरे वाले में 10,000 बसेस को सपोर्ट करना था। अभी दोनों का इतना बढ़िया दोनों का प्रोग्रेस चल रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4-5 महीनों में ही सारे टेंडर्स क्लोज हो जाएंगे। टेंडर क्लोज हो जाएंगे का मतलब पता लग जाएगा कि किस शहर में कितना बस जाना है, देने वाला कौन है, कैसे डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होगा, सारी चीजें लेड आउट हो जाएंगी। मतलब सारा जिसको आप स्पेड वर्क कहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद केवल बसेस रोल आउट होने शुरू हो जाएंगी, रोड पर बसें आने शुरू होंगी। ट्रक पहली बार पीएम ई ड्राइव में लाया गया है, और ट्रकों के साथ बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2% केवल इनका पूरे भारत में 34 करोड़ गाड़ियां हैं इस वक्त, तो 2% ही केवल मुश्किल से इनका, 2 से भी कम% ये हैं। लेकिन जब पोल्यूशन की बात आती है तो ट्रांसपोर्ट का 40-50% पोल्यूशन ही जनरेट करते हैं। तो इस वक्त जो है 4-5 कंपनियां हैं जो ट्रक बनाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने अभी रोल आउट किया है कि कौन सा ट्रक खरीदेंगे तो कितना आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो भी रोल आउट कर दिया है। पीएम ई ड्राइव के अंदर करीब 500 करोड़ रुपया रखा गया था और इससे करीब 5,000 ट्रक को सपोर्ट मिल सकेगा। कुल मिलाकर आप यह समझें कि उसका जो दाम है, उसका जो प्राइस है, स्टिकर प्राइस है, उससे 10% आपको सस्ता होगा। और दाम भी इस दौरान गिरा है, उसमें भी गिरावट आई है। जैसे आपको कहें कि 6 महीने पहले एक 55 टन, जो सबसे बड़ा ट्रक हुआ, 55 टन का ट्रक जो है उसका दाम हुआ करता था 1,10,20,00,000 के बीच में। इस वक्त वही ट्रक आपको 99,00,000 में उपलब्ध है।
सर एक आखिरी सवाल, इस रिपोर्ट के साथ साथ नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी जारी किया है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा और कौन से राज्य उसमें किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं?
तो इसमें इस तरह से कहें कि जो हम लोगों ने एक और रिपोर्ट अनवील किया वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का था, और इसमें जो है वो राज्यों को, वास्तव में राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो, क्योंकि राज्यों की प्रतिभागिता के बिना इसे चलाना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे लेके जाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसलिए उनको आगे लेकर के जाना जो है कंकरेंट सब्जेक्ट आता है लेके जाना कठिन होगा। तो इसलिए जो है राज्यों की प्रतिभागिता कैसे इसमें बढ़ाई जाए, उनको कैसे एक्टिव किया जाए, इसके लिए जो है ये इंडेक्स बनाया गया है। और इसमें कई सारे 3 बेसिक थीम्स लिए गए हैं, कुछ आउटकम कुछ इनेबलर्स को लेकर के हम लोगों ने एक वर्कआउट किया है कि कौन से राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन हो, यदि कहीं पर कोई बढ़िया काम हुआ है तो दूसरे जगह उसको रिप्लिकेट किया जा सके, ये रिपीट किया जा सके, राज्य इस बात को समझें कि इस बात को वो निकाल सके कि आखिर उनके इस दिशा में आगे बढ़ने में कहां पर कमी है और कैसे उसको करेक्ट किया जा सके। इस विषय में तो हम लोगों ने 2024 का इंडेक्स बनाया और 100 में स्कोर कहिए, जैसे स्कोर कार्ड होता है, तो बड़ा ही साइंटिफिकली डेवलप किया है इसको, राज्यों से पूछकर भी डेवलप किया है, और इनको एक रैंकिंग देने का कोशिश किया है। तो हम देखते हैं कि दिल्ली जो है वो नंबर 1 पर आता है 77 स्कोर के साथ, और उसके बाद महाराष्ट्र है, चंडीगढ़ है, कर्नाटक, तमिलनाडु है, इस तरह से ये रैंकिंग। इसके पीछे ये आइडिया नहीं है कि किसी राज्य को हम बुरा समझे, वो नया आइडिया है। आइडिया है कि हम राज्यों को एक जेंटल तरीके से उनको नज करें, एक इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें कि अब आप भी धीरे धीरे ज्यादा स्कोर लाइए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, अपने इस तरह से नियम कायदे कानून बनाइए जिससे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर हम लोग बढ़ें।
बिल्कुल, जाहिर है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा और हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनेगा।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे हरित परिवहन की ओर बढ़ता भारत और इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग में ई मोबिलिटी के कार्यक्रम निदेशक सुदेंदु ज्योति सिन्हा और पत्रकार सौरभ शुक्ला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।